ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम श्री अमरनाथ यात्रा, आस्था, सुरक्षा और सुविधा का अद्भुत संगम। इसमें भाग ले रहे हैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोड़ी और आचार्य धनंजय पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
आध्यात्म एक खोज है जो स्वयं से बड़ी किसी शक्ति से आपको जोड़ने में सहायक होती है। ऐसी ही खोज में श्रद्धालु निकल जाते हैं अमरनाथ धाम की जटिल यात्रा पर। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर की लिद्दर वैली में 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्रद्धा की चोटी अमरनाथ गुफा। अमरनाथ पर्वत समुद्र के तल से 5,486 मीटर की ऊंचाई पर है। 3 जुलाई की सुबह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज सुबह यात्रियों का तीसरा जत्था भी जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अमरनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं।
3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। उड़ीसा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों से अपील की कि वह बेहतर सहूलियत से दर्शन करने के लिए कॉन्वॉय के साथ ही दर्शन करने आए।
आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि सब लोग कॉन्वॉय के साथ ही आएं, ताकि वो सुरक्षित और सहूलियत से पहुंच सकते हैं। प्राइवेट गाड़ी से भी कोई आए तो उसका स्वागत है, लेकिन उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कॉन्वॉय के साथ ही वो चले। दूसरा, कई कारणों से विचार करके इस बार हेली सर्विस को बंद कर दिया गया है और इसलिए हेली सेवाएं इस बार नहीं चलेंगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से, विशेष रूप से कश्मीर के निवासियों से, जो परंपरागत रूप से इस यात्रा में पूरा सहयोग करते हैं, स्थानीय लोग भी, और बड़े उत्साह के साथ स्वागत करते हैं, वर्ष भर इंतजार करते हैं। आप पत्रकार मित्रों ने भी हर बार सहयोग किया है, तो आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि देश भर में एक अच्छा संदेश जाए कि कश्मीर के लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है उसका कोई मुकाबला देश में नहीं कर सकता है।
हम सभी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और श्रद्धालु इतना कठिन सफर तय करके आखिर क्यों जाते हैं इस यात्रा पे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचे आचार्य धनंजय पांडे के पास। आइए सुनते हैं आचार्य धनंजय पांडे ने इस यात्रा की महत्व के बारे में क्या जानकारी दी। आचार्य धनंजय जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न, आखिर अमरनाथ जी यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और लोग इतना कष्ट सह के इतनी ऊंचाई पे, 13,000 फीट समुद्र के तल से ऊंचा है अमरनाथ श्राइन केव, वहाँ पे लोग इतनी ऊंचाई पे इतनी कठिनाइयां सह के क्यों जाते हैं, आखिर इसके पीछे की क्या मान्यता है?
जी, सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति और सभ्यता में भगवान शिव, भगवान विष्णु, इन दो देवताओं का अहम योगदान है, जिसमें अमरनाथ में स्वयं बर्फानी, जिन्हें हम अमरनाथ के नाम से जानते हैं, वह एक अमरत्व का स्थान है। कथा के रूप में इसके बारे में यदि विस्तार से हम बात करते हैं, तो एक बार माता पार्वती के मन में संशय हुआ कि हम आम जनमानस, आम एक की बेटी हूँ और शिव साक्षात ईश्वर है, तो हमारा जीवन इनके साथ कैसे चल पाएगा, हमें बार बार मृत्यु को पाना पड़ता है। ऐसे में स्वयं अमरता को प्राप्ति करने हेतु उन्होंने भगवान शिव से बार बार प्रार्थना किया कि हमें भी अमरता का ऐसा कोई ज्ञान दें कि मैं भी आपके साथ सदैव अमर रहूं, बार बार मृत्यु को प्रार्थना करना पड़े। ऐसा बार बार पार्वती जी के द्वारा कहे जाने के बाद भगवान शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको अमर कथा सुनाऊंगा। अमर कथा सुनाने हेतु एक ऐसे स्थान का चयन करना था जहां माँ भगवती पार्वती व भगवान शिव के सिवा और कोई वहां पे उपस्थित न रहे, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जिसकी जीवन हुई है उसका मृत्यु होना आवश्यक है, तो प्रकृति के व्यवस्था टूटने न पाए ऐसे स्थिति में ऐसे स्थान का चयन करना था जहाँ पे केवल माँ पार्वती और भगवान शिव ही रहे। ऐसे में भगवान शिव ने अपने नेत्र को बंद किए और पूरे ब्रह्मांड में अपने दृष्टि को दौड़ाए, जिसमें उन्हें दिखा कि कश्मीर क्षेत्र के एक दुर्गम पहाड़ी पे जहां न जाने का कोई मार्ग था, उस समय वहां पे विशालकाय नदियां भयावह रूप में प्रवाहित हो रही थी। वहां पे हवा की इतनी कमी थी कि वहां का जीवन बहुत ही कठिन था। हर हवा वहां का बर्फ के रूप में उपस्थित था। ऐसे स्थान देखने के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को लेकर के सर्वप्रथम पहलगांव गए। पहलगांव में उन्होंने अपने सवारी नंदी का त्याग किया। ऐसे ही रास्ते में चार पांच दुर्गम स्थान पड़े जहां पे अपने गले में लगे सर्प का त्याग किया। उसके बाद से उन्होंने माँ पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया। वहां पे अमरता की कथा माँ भगवती को भगवान शिव ने सुनाया, जिसके कारण वह स्थान इतना पवित्र हो गया कि उस स्थान पे एक मान्यता बन गई कि जो भी व्यक्ति जाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, साथ ही वह मोक्ष को प्राप्त होगा। इसीलिए अमरनाथ की गुफा को मोक्ष भूमि कहा जाता है। वह उसका संस्कृत नाम स्वयंभू बर्फानी है।
आचार्य जी, आपने ये पूरी कथा का वर्णन इतने आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं के लिए किया है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जो गुफा है, आपने बताया कि वहां पे ये कथा कही गई और पार्वती जी को शंकर भगवान ने कथा सुनाई, पर जो गुफा में जो शिवलिंग का निर्माण अपने आप होता है,
अमरनाथ की जो कथा है या वहाँ का जो स्थान है, वहाँ दो कपोत है जिसको कबूतर बोलते हैं हम, वहाँ पे दो जीवों ने कथा सुनी थी, एक तोते के बच्चे ने और इन दो कबूतरों ने। तोते के बच्चे ने कथा सुनते हुए हुंकार भर रही थी और माता पार्वती जी स्वयं निद्रा में चली गईं। कुछ देर बाद भगवान शिव को यह आभास हुआ कि ये कथा तो पार्वती जी नहीं, यह कथा कोई और जीव सुन रहा है। उन्होंने अपने त्रिशूल को उस जीव के पीछे छोड़ा जिसे हम सुग कहते हैं, सुगा कहते हैं, आज के आसान भाषा में उसे आज तोता कहते हैं। वो तोता वहां से निकलने लगा और उड़ते 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 पहुंच गया सुखदेव जी के पिताजी के पास। वहां जाके उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे जीव की रक्षा करें, मेरे पीछे साक्षात काल पड़ा हुआ है। उस समय उन्होंने अपने पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी को भेज दिया, जहाँ पे 12 वर्ष तक सुखदेव जी वहाँ रहे। दूसरी बात आती है, वहीं साथ में दो कपोत भी कथा को सुन रहे थे। कपोत नहीं थे, वो भगवान शिव के दो गण थे जो कथा के समय कुछ दूरी पर आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिससे भगवान कोप में आ गए। दोनों को शाप दिया कि तुम इसी दुर्गम स्थान से कपोत बनकर के आजीवन रहोगे, जिसके बाद आज भी दो कपोतों का दर्शन होता है। कथा समाप्त होने के बाद उस दो कपोतों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, जब आप हमें यह शर्त दे ही दिया कि मैं इस दुर्गम स्थान पे रहूंगा, तो ऐसा करिए कि मिलता रहे बार बार। वहीं उन्होंने कहा कि चलो, तुम्हें इतना कष्ट के बाद तुम क्योंकि मेरे गण हो, इसलिए हमें भगवान शिव हमें माँ भगवती व गणेश का वर्ष में दो माह तक दर्शन यहाँ बर्फ के रूप में होगा। तब से वहाँ से इस तीन छोटे बर्फ के दुर्लभ आकृति बनती है यहाँ से, क्योंकि मैं तो वहाँ पे साक्षात दर्शन किया हूँ, इसलिए इसको साक्षात्कार मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे कहीं से भी एक बूंद भी बर्फ आने की कोई जगह या पानी टपकने की कोई जगह नहीं है, और वहाँ विशालकाय माँ भगवती, भगवान शिव व छोटे गणेश जी की आकृति बनती है। और वहाँ कबूतर आज भी देखने को मिलते हैं, उतने दुर्गम में कोई और पंछी कोई और जीव नहीं दिखता है, लेकिन दो कबूतर वहाँ आज भी दिखाई देते हैं। जो भाग्यशाली जो पुण्यात्मा होता है उसे ही वो कबूतर दिखाई देते हैं, बाकी अन्य लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। और हर बार की यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं को कबूतर दिखाई देते हैं, जिनके मन में श्रद्धा और भावना और सत्यता रहती है।
जी आचार्य जी, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, साथ ही आपने अपने एक्सपीरियंस को भी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस यात्रा के दो रूट हैं, एक है पहलगाम रूट और दूसरा है बालटाल रूट। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कड़े प्रबंध किए हैं। आइए सुनते हैं उपराज्यपाल ने सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी देते हुए क्या कहा।
सुरक्षा की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ ने मिलकर के एक चाक चौबंद व्यवस्था प्रारंभ से लेकर के और गुफा तक और सफल वापसी का किया है। चाहे वो एरिया डोमिनेशन हो, इमारती की संख्या हो, थ्री टीयर सिक्योरिटी बेस कैंप में लगाई गई हो या डिप्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है, तो जेके पुलिस के भी ऑफिसर्स पहले की तुलना में ज्यादा डिप्लॉय हुए हैं, सीएपीएफ की कंपनी भी पहले की तुलना में ज्यादा है, और मैं कर सकता हूं मॉक ड्रिल इन लोगों ने अपनी पूरी कर ली है। इसके साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट्स की सिक्योरिटी को भी सुरक्षा बलों ने काफी बढ़ाया है, तो मैं कह सकता हूं कि सर्विस प्रोवाइडर से लेकर के हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन का काम भी मोटे तौर पर पूरा कर लिया गया है।
स्पीकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी शेयर डिटेल्स अबाउट द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट द मेडिकल फैसिलिटीज मेड अवेलेबल टू इंश्योर अ स्मूथ यात्रा। Mr. Bidhuri, welcome to Akashwani News.
Thank you.
Mr. Bidhuri, first of all, the prime and most important concern that the country has today is about the safety arrangements and security arrangements made by the Jammu Kashmir administration to ensure that the yatris who are visiting, who are on the pilgrimage, do not face any kind of security threat. So what arrangements have been made by the administration to ensure seamless yatra this year?
Like, as you are aware, this yatra is very important for us, not only for the country, but for this part of the country. And this yatra generally is of the people's yatra, you can say. As you are aware, this yatra is been going on for thousands of years. And people here, they used to take part, even the local people, be that Pony Wala, Pithu Wala, Palki Wala, the tentages, service provider, or maybe the taxi wala, you can say. So there are a number of local people who are involved in it. As far as safety, security is concerned, maybe few people might be thinking that aftermath of the Pahalgam attacks, there might be concerns, and this is quite reasonable also. But on your show, I wanted to make it very much clear that at the highest level, from the Honorable PMO office to Honorable Home Minister office, then down to the Honorable Lieutenant Governor office in J&K, and then even Chief Secretary and DGP, all have taken due cognizance of this fact and made widespread arrangements. Their multi-layer security arrangements are put in place. And adding to that, my request through your show is that if you are planning, you are most welcome. You are safe, secure, and rest assured about your safety. But my humble request to you from the administration side is, there are two requests I wanted to make. Number one, please do follow the convoy's earmark for this. Because if you are in convoy, then you have the hassle-free safe yatra, that is assured. And number two, we have ensured some cutoff timings. And even if tourist is coming, so we are requesting them that they should travel only when people are on the ground on main roads, then only you travel. And that has been duly publicized on the SASB website, the Shrine Board website also, you can see through it. And when you arrive at the airport, even there also you can see, and even other camps are there, there also you can get that information. So again, a request that first, no need to worry about it. We are committed and you are our responsibility. We have made a multi-layer security arrangement, so you need not worry about that. Just follow the SOP and follow the convoy movement.
Bidhuri ji, aapne ye bataya ki is yatra ko karane mein kafi logon ka involvement hota hai, chahe wo pony wale hon, chahe taxi wale hon. Yahan main aapse ye samajhna chahungi ki yatra karane mein jo bhi log involved hote hain, kya unki koi background check, security check bhi kiye jaate hain?
डेफिनेटली देखिए, जैसे जैसे सिचुएशन आप देख ही रहे हैं, तो उसमें हम बैकग्राउंड चेक भी इनकी कराते हैं, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन भी कराते हैं, साथ में इस बार नया हमने इंटेलिजेंस नेटवर्क भी इसमें जोड़ दिया है। तो उसमें फिर हमें कुछ, मैं आपको अगर फिगर बताऊं तो लगभग 26,000 के करीब हमारे पास, 26,000 के अराउंड हमारे पास ये पौनी वाला, पालकी वाला, ये सब जो है हमारे पास रजिस्टर्ड है। बिसाइड्स जो बाकी जो इसमें स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग जो सैनिटेशन वर्कर्स भी इवन यहाँ पे जो इन्वॉल्व है हमारे पूरे एक्सिस पे, आपने देखा होगा वाइड सिक्योर्ड सैनिटेशन के अरेंजमेंट भी हमने किए हैं, जिससे साफ सफाई और लोगों को एक अच्छी यात्रा जो है मिल जाए। जीरो वेस्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, तो इन सभी की सिक्योरिटी चेक बिल्कुल हमने इसमें की है। और जिनको भी हमें लगा कि ये, वैसे तो डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली भी अगर वो थोड़ा सा भी हमें लगता है कि वो थ्रेट हो सकती है, तो हमने उसको फिर इस पूरे यात्रा प्रक्रिया से उसको जो है बाहर किया हुआ है।
यहाँ पे आपसे एक और सवाल जो मेरे मन में आता है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी यात्रा को फ्लैग ऑफ करते हुए 3 तारीख को ये कहा था श्रद्धालुओं से कि इस साल हेली सर्विस को बंद किया गया है, तो क्या इसके पीछे जो कारण है आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं?
देखिए, इसमें एक तो मैं चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि एक हेली सर्विस को ये तो बनाया गया कि भाई हेली सर्विस है, और उसको एक तरह की अनड्यू वेटेज आई कैन से। अगर मैं पूरे यात्रा का नंबर देखूंगा तो लगभग 8% ओनली 8% यात्री जो है वो जनरली हेलीकॉप्टर का जो है इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, नो फ्लाइंग जोन हमने इसको रखा हुआ है, तो जनरली ये कि हेली सर्विस बंद होने से यात्रा पे बहुत फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। जनरली यात्री, और वैसे भी आप जानते हैं अभी श्रावण और इस सब का मौसम चल रहा है, तो जनरली हेली सर्विस भी जब वेदर पैक हो जाता है है तो उस समय भी उसमें बहुत अप एंड डाउन इश्यूज हमारे आते हैं, बट अभी सेफ्टी सिक्योरिटी और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंसिडर डिसीजन लिया गया सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कि इस बार हम जो है हेली सर्विसेज में नहीं चलाएंगे। बट अगेन मैं बताता हूँ कि इसको आई थिंक ओवर हाइप्ड मैं कहूंगा, इतना कोई फर्क इसे नहीं पड़ता है यात्री में। अगर मैं अभी भी बात आपसे कर रहा हूं तो ऑलरेडी 26,000 के करीब लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं, तो एक अच्छा जिनका श्रद्धा है वो बिल्कुल आ रहे हैं और जिनकी श्रद्धा है वो बिल्कुल आए और इसमें अच्छे से दर्शन करें। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे लोग, जम्मू कश्मीर के वासी भी आपके लिए तैयार है।
मिस्टर बिदूरी, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट वॉट आर द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल चेक्स दैट हैव टू बी डन बिफोर समबडी विजिट्स अमरनाथ श्राइन केव।
देखिए, आपको पता है इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है और आपको पता है कि एक एज की भी उसमें लिमिट है और जो मेडिकल फिट है वही इस पे आए, क्योंकि लगभग 13,500 फीट ऊंचाई पे जो है आपको पता है अमरनाथ जी बाबा की गोली केव है। तो इसको अगर कोई ये समझ के आता है, वैसे तो यहाँ जनरली जो दर्शन करते आए हैं मेजोरिटी तो वही लोग होते हैं, बट न्यू कमर्स भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस जगह को ऐसा ना समझे कि ये कोई पिकनिक स्पॉट या उस तरह से आप जा रहे हैं। ये ऑफकोर्स एक ट्रैक है, इवन अगर आप बालटाल से भी जाते हैं तो लगभग आपको 14-16 किलोमीटर का जब आपको ट्रैक करना पड़ता है और ऊंचाई जो है आपको जैसे मैंने बताया 13,500 फीट, और अगर आप ट्रेडिशनल रूट पहलगाम से आते हैं तो उसमें बीच बीच में ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो इवन 14,500 फीट की ऊंचाई तक भी जाते हैं, तो इसके लिए मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। तो इसको कोई आसानी से या मतलब इसको मैं कहूंगा कि इजी वे में ना ले, यात्री आ रहा है तो वो फिट हो यात्रा स्टार्ट करने से पहले, अपना फिजिकल एक्सरसाइज वैसे तो अब एक महीने पहले कर देने चाहिए थी, बट इन फ्यूचर भी अगर किसी को अपना मन हो तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी या वॉक या थोड़ी रनिंग जॉगिंग जो भी अगर वो करे तो अच्छा है। मेडिकली फिट जब सर्टिफिकेट कोई लाता है तभी उसका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है, इवन ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देखा जाता है और उसके बाद ही उसको रजिस्टर किया जाता है। और जहां तक रही ट्रैक पे करने की बात, तो मैं आपको बता दूं कि हमने 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है दोनों एक्सिस पे चंदनवाड़ी पे भी और इधर बालटाल पे भी जो है इन प्लेस किए गए हैं, और पूरे रास्ते में हमारे जो मेडिकल फैसिलिटीज है ऑक्सीजन कैंप्स है, पंचतरणी में भी इस बार 30 बेडेड का हॉस्पिटल जो है वहाँ बनाया गया है, होली केव में भी आप देखेंगे इंतजामात है, तो पूरे ट्रैक पे पूरे रूट पे जो है सभी हेल्थ के अच्छे इंतजामात हैं। और साथ के साथ इसमें जब हम फीडबैक लेते हैं यात्रियों से 97% जो है हमें उन्होंने ग्रेडिंग दी है कि दे आर सेटिस्फाइड आउट ऑफ 100 की, बहुत अच्छे इसमें हेल्थ के भी, सैनिटेशन के भी और हैसल फ्री यात्रा हमारी हुई है। All I can say is that what was there in the last year, it is top notch. मतलब further it is upgraded this time. It has been further upgraded. And in this further, I wanted to request you. And first, I want to assure you that it is safe and secure yatra. Just my request is, please do follow the convoy route while you are entering. Maybe by road. If you are coming by road, then starting from Lakhanpur checkpost. If you are entering, then the yatris will be properly escorted to the nearest camp. And from there, please do follow the only the convoy route. And please do follow the adhere to the cutoff timings. And the last one, I must request all the pilgrims. There is a proper some tendency among the pilgrims that they have registered. You know, we have certain limitation put up by Honorable Supreme Court that 10,000 from each axis we can send. And then there is a process of registration of day wise. And suppose somebody is appearing our camp if his date is say 20th of July, 21st July, and he's coming and reporting to our camp and saying that please allow me to do yatra. So this kind of situation, you know, it's create a very bad taste even for yatri, even for us, and even for those people who have duly registered for that date. It is unnecessary creating problems. So my humble request through you is, if whosoever is listening, ki srota gan se ye meri haath jod ke vinamra vinti hai ki bhaiya jab aapne registration kiya hai to kripya usi din aaye jis din ka aapka registration hai, aur fir usse hame aur acche aapko yatra karane mein hame aasani hogi, madad hogi.
Thank you so much, Mr. Bidhuri, for sharing such deep insights on the yatra. I'm sure this information will reach a number of people who are planning their yatra this year. Thank you so much for joining us on Akashvani.
Thank you.
Now we are joined by Mr. Gurvinder Singh, senior official from Akashvani. Mr. Singh, welcome to Akashvani News. First of all, communication is the key to keep pilgrims informed about the yatra updates. Could you tell us what arrangements are made during the yatra to ensure a seamless flow of information?
Yes, as per the practice followed in the last few years, we are taking special care for disseminating information to the yatris. We have installed a makeshift FM transmitter at base camp Baltal. Another transmitter at the other base camp, Pahalgam, is already in place. So we are having a dedicated studio setup at Akashvani Srinagar, which has a dedicated team of program staff. They are providing content of devotional music, daily reports from the base camp, yatra routes, special interviews, information capsules, and special reports from our team of reporters from the base camp. So this channel will also be available on our DTH platform on Aradhana channel, that is the devotional channel. In a couple of days, it will be available in our OTT platform, that is Waves, and it is already available in our News on Air app on mobile. So there are plenty of options for the yatris and the other devotees all over India and neighboring countries. They can have all the information about the yatra that is going on from Pahalgam and Baltar.
गुरविंदर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी और हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए, क्या आप उस चैनल की फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं और क्या आकाशवाणी क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट कर रहा है कि जिससे यात्रियों को इन्फॉर्म रखा जाए दिशा निर्देशों के बारे में, और अगर कोई स्पेशल चैनल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं?
बाल्टाल FM की फ्रीक्वेंसी है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ और पहलगाम की फ्रीक्वेंसी है 101.0 मेगाहर्ट्ज़। ये हमने कैंप के बाहर अपने होर्डिंग्स लगा रखे हैं जिसपे इसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है। उसमें न्यूज ऑन एयर ऐप का लोगो भी दिया गया है, वेव्स ओटीटी का भी, और डीटीएच का जो हमारा आराधना चैनल है उनको भी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है, जिससे कि यात्रियों को ये जानकारी रहेगी कि हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है जिससे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी यात्रा के बारे में ले सके।
Lastly, Mr. Gurvinder, I would also like to draw your attention to fake news. Fake news is a very pertinent problem and it deviates people, and in your case, the Amarnath Yatra, fake news can deviate pilgrims from correct information. How are you ensuring that the fake news is curbed?
जैसे कि ये जाना ही जाता है कि आकाशवाणी की जो खबर होती है वो ऑथेंटिक ही होती है। अगर इधर उधर से किसी को कोई डाउट हो तो हमेशा वो आकाशवाणी और दूरदर्शन के न्यूज चैनल को ही ट्यून इन करता है। तो हमारी ये यात्रियों से निवेदन है कि जब भी कोई इस तरह की कोई र्यूमर या कोई घटना दुर्घटना की जानकारी मिले, उनकी नॉलेज में आए, तो हमारे आकाशवाणी के FM, DTH, वेव्स, न्यूज ऑन एयर ऐप पे हमारे जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट चल रहा है उसको ट्यून इन करें और लगातार उसको सुनते रहें। दूसरी बात यह है कि हम अपने आकाशवाणी पे जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट है तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं देते जब तक हम सरकारी सूत्रों से उसकी पुष्टि नहीं कर लेते। तो मेरा फिर से निवेदन है कि जब भी कोई ऐसी बात लगे तो हमारा FM ब्रॉडकास्ट तो वहां पे है ही है 103.7 और 101.0 पे। जैसे ही कोई इस तरह की कोई घटना दुर्घटना या कोई वेदर अपडेट्स होते हैं या कोई अनाउंसमेंट होती है तो हम तुरंत अपने स्टूडियो से वहां से इसकी जानकारी अपने ब्रॉडकास्ट में शामिल करते हैं।
गुरविंदर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वेदर की जानकारी हो, चाहे रूट की जानकारी हो, इन सारी जानकारी के लिए आकाशवाणी के चैनल को ट्यून इन करें और सही जानकारी वहां से प्राप्त करें। आप हमारे शो पर आए, आपने इतनी जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
लेट्स लिसन टू द एक्सपीरियंस ऑफ यात्रीज हु आर ऑन द पिलग्रिमेज।
अमरनाथ की पहली बार की, हम सब के लिए दुआ मांगेंगे।
लक्ष्मी, मैं भी गुजरात से, सभी साल आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे सुरक्षा ही अच्छी है, अभी सभी का सपोर्ट भी है। मोदी जी के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, ज्यादा वाला थैंक यू।
President of Pahalgam Pony Union expressed happiness that the yatra has brought back people to Pahalgam.
मैं पहलगाम लोकल पोनी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमें इंतहाई खुशी है कि आज यात्रा आने वाली है। दो महीनों के बाद में यहाँ पे जो कारोबार थोड़ा शुरू होने लगा है, हम घोड़े वालों की तरफ से भी इतनी खुशी है कि हम रोड पे आए हैं। सब ट्रेड वाले रोड पे आए हैं, घोड़े वालों की तरफ से जो ये बैनर लगाया है, सादगी से हमने वेलकम किया है, क्योंकि जो 22 अप्रैल को यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है इसीलिए सादगी निभानी पड़ी। हम दिल के अमीर गहराई से यात्री को वेलकम करते हैं और वेलकम के लिए खड़े हैं। देश के तमाम लोगों को यही गुजारिश करते हैं कि आप आए, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं और आप दर्शन करिए, दर्शन करके आराम से वापस जाए। हमें यही उम्मीद है कि पिछले साल से ज्यादा आनी चाहिए, हम उनके वेलकम के लिए खड़े हैं।
लोकल कश्मीरी एक्सप्रेस हैप्पीनेस ऑन वेलकमिंग द यात्रीज।
पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बेचैनी से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ से टीम लगे हैं पूरे बराबर सोनमर्ग तक, पहलगाम तक, सिविल सोसाइटी, अवकाफ कमेटी, ट्रेड, माँ बहने, बुजुर्ग, कि हम यात्रा को किस तरीके से वेलकम करेंगे।
बहुत खुशी का दिन है कि जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, आज 2025 है और जिस हिसाब से यहाँ कश्मीर में हम उनका जोशो खरोश से इस्तकबाल कर रहे हैं।
यात्रियों तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए आकाशवाणी ने कई प्रबंध किए हैं। इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाशवाणी श्रीनगर से गुरविंदर सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल, Communication is the key to keep pilgrims informed about the yatra updates. Could you tell us what arrangements are made during the yatra to ensure a seamless flow of information?
Yes, as per the practice followed in the last few years, we are taking special care for disseminating information to the yatris. We have installed a makeshift FM transmitter at base camp Baltal. Another transmitter at the other base camp, Pahalgam, is already in place. So we are having a dedicated studio setup at Akashvani Srinagar, which has a dedicated team of program staff. They are providing content of devotional music, daily reports from the base camp, yatra routes, special interviews, information capsules, and special reports from our team of reporters from the base camp. So this channel will also be available on our DTH platform on Aradhana channel, that is the devotional channel. In a couple of days, it will be available in our OTT platform, that is Waves, and it is already available in our News On Air app on mobile. So there are plenty of options for the yatris and the other devotees all over India and neighboring countries. They can have all the information about the yatra that is going on from Pahalgam and Baltal.
Gurvinder ji, main aapse ye samajhna chahungi aur hamare shrotaon ki jankari ke liye, kya aap us channel ki frequency ke bare mein hame bata sakte hain aur kya Akashvani kya koi special arrangement kar raha hai ki jisse yatriyon ko informed rakha jaye disha nirdeshon ke bare mein?
Baltal FM ki frequency hai 103.7 megahertz aur Pahalgam ki frequency hai 101.0 megahertz. ये हमने कैंप के बाहर अपने होर्डिंग्स लगा रखे हैं जिसपे इसको प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है. उसमें न्यूज ऑन एयर ऐप का लोगो भी दिया गया है, वेव्स ओटीटी का भी, और डीटीएच का जो हमारा आराधना चैनल है उनको भी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है, जिससे कि यात्रियों को ये जानकारी रहेगी कि हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है जिससे हम ये सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी यात्रा के बारे में ले सकें.
Lastly, Mr. Gurvinder, I would also like to draw your attention to fake news. Fake news is a very pertinent problem and it deviates people, and in your case, the Amarnath Yatra, fake news can deviate pilgrims from correct information. How are you ensuring that the fake news is curbed?
जी, जैसे कि ये जाना ही जाता है कि आकाशवाणी की जो खबर होती है वो ऑथेंटिक ही होती है. अगर इधर उधर से किसी को कोई डाउट हो तो हमेशा वो आकाशवाणी और दूरदर्शन के न्यूज चैनल को ही ट्यून इन करता है. तो हमारी ये यात्रियों से निवेदन है कि जब भी कोई इस तरह की कोई र्यूमर या कोई घटना दुर्घटना की जानकारी मिले, उनकी नॉलेज में आए, तो हमारे आकाशवाणी के FM, DTH, Waves, News On Air ऐप पे हमारे जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट चल रहा है उसको ट्यून इन करें और लगातार उसको सुनते रहें. दूसरी बात यह है कि हम अपने आकाशवाणी पे जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट है तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं देते जब तक हम सरकारी सूत्रों से उसकी पुष्टि नहीं कर लेते. तो मेरा फिर से निवेदन है कि जब भी कोई ऐसी बात लगे तो हमारा FM ब्रॉडकास्ट तो वहां पे है ही है, 103.7 और 101.0 पे. जैसे ही कोई इस तरह की कोई घटना दुर्घटना या कोई वेदर अपडेट्स होते हैं या कोई अनाउंसमेंट होती है तो हम तुरंत अपने स्टूडियो से वहां से इसकी जानकारी अपने ब्रॉडकास्ट में शामिल करते हैं.
गुरविंदर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो वेदर की जानकारी हो, चाहे रूट की जानकारी हो, इन सारी जानकारी के लिए आकाशवाणी के चैनल को ट्यून इन करें और सही जानकारी वहां से प्राप्त करें. आप हमारे शो पर आए, आपने इतनी जानकारी साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरक्षण अंद्राबी ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया और कहा कि जो भी दुआ ये श्रद्धालु कर रहे हैं वह कबूल हो.
लोग आ रहे हैं और हमने उनका वेलकम दिल से किए ही हैं. हमारे भारत वर्ष से सारे लोग आ रहे हैं, हमारे भाई बहन हैं, इनका खुले दिल से स्वागत है. यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है. जो LG मनोज सिन्हा साहब और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि ये यात्रा बहुत खुश असलूबी से यहाँ पे होगी, और जो हमारे भाई पूरे भारत वर्ष से आए हैं ये हमारे दिलों में रहते हैं, और ये जो यात्रा करने जा रहे हैं ये खुशी का आलम हो और यहाँ ये जो दुआएं करेंगे वो कबूल हो.
अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम श्री अमरनाथ यात्रा, आस्था, सुरक्षा और सुविधा का अद्भुत संगम. इसमें भाग ले रहे थे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी और आचार्य धनंजय पांडे. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।